प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं शैलेंद्र भारती आज आपके सामने शिव पुराण की एक कहानी लेकर के आया हूं, जिसका विषय है अर्धनारीश्वर। दोस्तों, जीवन में आप सब कुछ अपने बल से, अपने धन से, अपने सोशल स्टेटस से प्राप्त कर सकते हैं, परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि ये सब करने की शक्ति आप में आती कहां से है? यदि आप में चेतना अर्थात कॉन्शियसनेस ना हो तो क्या आप ये सब कर पाएंगे? नारी, बहन, सखी, पत्नी, गर्लफ्रेंड, मां या प्रकृति, इन सब बातों से आप क्या समझते हैं? धरती में आप एक बीज को बोते हैं, उसमें खाद और पानी सब कुछ डालते हैं, पर यदि उसमें प्रकृति की शक्ति न हो, क्या वो बीज कभी फल फूल सकता है? भारतीय सनातन सिस्टम में नारी शक्ति को चेतना का प्रतीक माना गया है, इसे प्रकृति कहा गया है, वहीं पुरुष को जड़ माना गया है। आज की भाषा में इसे समझना है तो आप कह सकते हैं कि प्रकृति या चेतना सटल एलिमेंट है, जो जड़ यानी कि ग्रॉस, इसी सटल और ग्रॉस से हमारी ये दुनिया चलती है। इसे ही शास्त्रों में शिव और शक्ति का मिलन बताया गया है। शिव पुराण की यह अद्भुत कहानी हमारे जगत के प्रारंभ की तो बात बताती ही है, और साथ में ही हमें ये भी बताती है कि बिना नारी शक्ति के पुरुष का सारा बल व्यर्थ है, यानी कि यूजलेस है। आइए सबसे पहले शिव पुराण की इस कथा को सुनते हैं और फिर इसे समझने का प्रयास भी करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे इस जगत को बनाया था भगवान ब्रह्मा ने। हमारे इस यूनिवर्स को जब ब्रह्मा जी बना रहे थे तो उन्होंने पाया कि उनके द्वारा रची हुई सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था। सृष्टि यानी कि यूनिवर्स बन तो रहा था पर एक्सपांड नहीं कर रहा था। ब्रह्मा जी बहुत दुखी हो गए। उन्हें जो काम दिया गया था वो पूरा नहीं हो रहा था। उसी समय तब एक आकाशवाणी हुई, ब्रह्मन अब मैथुनी सृष्टि करो। दोस्तों, मैथुनी सृष्टि यानी कि नारी और पुरुष के साथ आने से जो प्रोक्रिएशन होती है वो। आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि का विचार तो कर लिया, पर एक प्रॉब्लम थी, नारी तो अभी इस सृष्टि में आई ही नहीं थी। विचार तो कर लिया पर उसको एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं था। फिर ब्रह्मा जी को समझ में आया कि भगवान शिव की कृपा से बिना मैथुनी सृष्टि नहीं हो सकती, और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक ही उपाय था, उनकी तपस्या। बिना समय गंवाए ब्रह्मा जी भगवान शिव की तपस्या में लग गए। तप घोर था, ब्रह्मा के उस तीव्र तप से शिवजी प्रसन्न हो गए। इसी प्रसन्नता के चलते उस समय शिवजी अर्धनारीश्वर रूप में ब्रह्मा के सामने प्रकट हो गए। देवाधिदेव भगवान शिव और उन्हीं का आधा भाग पराशक्ति, दोनों को एक ही शरीर में देखकर ब्रह्मा जी भूमि पर दंडवत होकर लेट गए। उसके बाद फिर से एक भविष्यवाणी हुई, वत्स, मुझे तुम्हारा संपूर्ण मनोरथ पूर्णतया ज्ञात है। इस समय तुमने जो प्रजाओं की वृद्धि के लिए कठोर तप किया है उससे मैं परम प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट वर अवश्य प्रदान करूंगा। नारी कुल की सृष्टि करना ब्रह्मा जी की शक्ति के बाहर की बात थी। पराशक्ति तो सामने शिव के अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट थी, पर अब जगत को आगे बढ़ाना था। ब्रह्मा जी चाहते थे ये पराशक्ति पूरे जगत के कल्याण और वृद्धि के लिए उनके पुत्र दक्ष की पुत्री होकर सृष्टि में आए। शिव जी ने इस प्रार्थना पर तथास्तु कह दिया और दक्ष की पुत्री होने का वचन दिया। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे इस यूनिवर्स में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि अर्थात फिजिकल प्रोक्रिएशन प्रारंभ हुई। भगवान अर्धनारीश्वर से जब ब्रह्मा जी को मैथुनी सृष्टि की शक्ति मिली तो ब्रह्मा जी का शरीर दो भागों में बंट गया। उनके आधे शरीर से एक परम रूपवती स्त्री सामने आई और आधे से एक पुरुष। जो पुरुष था वह स्वयं भुव मनु थे, जो संसार के प्रथम पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हुए, और जो स्त्री रूप सामने आया वो शतरूपा के नाम से जानी गई। स्वयं भुव मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा शतरूपा योगिनी और तपस्विनी हुई। इसी धार्मिक मान्यता के चलते भगवान शिव के जिस रूप को शक्ति, साहस और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है वो उनका अर्धनारीश्वर रूप है, जिसमें उनके साथ पराशक्ति शामिल है। आधा शरीर स्त्री और आधा पुरुष। भगवान शिव ने ये अवतार स्वयं अपनी इच्छा से लिया था, इसीलिए इसे स्वयं भुव कहा गया, यानी कि अपने आप होने वाला। क्योंकि इस रूप के माध्यम से वे लोगों को इस बात का संदेश देना चाहते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों ही समान हैं, इसीलिए शिवजी का यह स्वरूप स्त्री और पुरुष की समानता को, दोनों के बीच की इक्वालिटी को दर्शाता है। शिव पुराण की इस स्पिरिचुअल कथा से वैसे तो नारी और पुरुष के इस सृष्टि में आने की बात कही गई है, पर इन सबसे भी बड़ी एक बात जो हमारे इस जीवन का सत्य है वो ये कि नारी ही वो शक्ति है जिसके बिना इस सृष्टि अर्थात इस यूनिवर्स का संचालन नहीं हो सकता। दोनों का यानी कि पुरुष और नारी का जीवन एक दूसरे के बिना अधूरा है दोस्तों। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही नहीं करते बल्कि सप्लीमेंट भी करते हैं, पूरा भी करते हैं। दे कंप्लीट ईच अदर। श्री राम ने रावण जैसे दुष्ट का दमन करना था तो उससे पहले उन्होंने भगवती भवानी की आराधना से ही विजय शक्ति प्राप्त की थी। छत्रपति शिवाजी ने भी भगवती भवानी की आराधना से ही शक्ति अर्जित कर बाहर के अत्याचारियों से लोहा लिया था। महाराणा प्रताप द्वारा भगवती चामुंडा की आराधना हो, गुरु गोविंद सिंह जी की रचना चंडी दीवार हो, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स आपको इतिहास से मिल जाएंगे कि जब जब मानव जाति ने कुछ अनूठा और बड़ा करना था तो उन्हें शक्ति की आराधना करनी ही पड़ी। दोस्तों, अब हम यदि अपनी आज की दुनिया को देखें तो क्या पाते हैं? क्या नारी शक्ति की उस रूप में उपासना होती है? क्या हम उस शक्ति के प्रत्येक रूप को सम्मान देते हैं जो हमें देना चाहिए? हो सकता है कि दुर्गा मां जगदम्बा की आप आराधना करते हो, पर जो नारी शक्ति हमारे चारों ओर है, यानी कि हमारी मां, पत्नी, बहन या दोस्त के रूप में, परंतु क्या हम उस शक्ति को देखते हैं जो शिवजी के अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुई थी? शास्त्रों के अनुसार शिव और शक्ति सनातन हैं, यानी कि हमेशा से हैं और तब तक रहेंगी जब तक हमारा ये जगत रहेगा। शिव और शक्ति साथ में ही रहेंगी, एक के बिना दूसरे का होना संभव नहीं। यदि आप पुरुष गुण को इंपॉर्टेंस दें और नारी शक्ति को इग्नोर करेंगे तो इस जगत के आधे तत्व यानी एसेंस को खो देंगे। दोस्तों, ये जान जाइए कि इस पराशक्ति, इस आदि शक्ति के आशीर्वाद के बिना आप एकदम शक्तिहीन हैं, पावरलेस। पावर तो आपको तभी प्राप्त होगी ना जब आप इस शक्ति के आदि और सनातन रूप यानी कि फर्स्ट एंड इटर्नल रूप को समझ पाएंगे, उसके प्रति सम्मान दिखा पाएंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी भक्ति में लीन होकर ही आप उससे आशीर्वाद ले पाएंगे। आशा करता हूं कि भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप और उसकी ये कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। मैं शैलेंद्र भारती फिर से आपके सामने शिव पुराण की एक और कहानी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।